नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं शक्ति सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नायान के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर वार्ता की। बैठक में भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच रक्षा, अंतरिक्ष, ऊर्जा, सुपर कंप्यूटिंग और खाद्य सुरक्षा के क्षेत्रों में कई समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। विदेश सचिव विक्रम विश्री ने बताया कि रणनीतिक रक्षा साझेदारी, अंतरिक्ष अवसंरचना विकास और उसके व्यवसायीकरण पर संयुक्त पहल तथा गुजरात के धोलेरा में विशेष निवेश क्षेत्र के विकास में संयुक्त अरब अमीरात की भागीदारी के क्षेत्र में समझौते हुए। श्री मिश्री ने बताया कि दोनों देशों ने HPCL इंडिया और संयुक्त अरब अमीरात के एडनॉक गैस के बीच क्रय विक्रय समझौते पर हस्ताक्षर किया। उन्होंने कहा कि भारत और संयुक्त अरब अमीरात भारत में एक सुपर कंप्यूटिंग क्लस्टर स्थापित करने पर सहमत हुए हैं।
On the trade front, following...
व्यापार के मोर्चे पर 2022 में दोनों देशों के बीच व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते पर हस्ताक्षर के बाद से द्विपक्षीय व्यापार $100 मिलियन को पार कर चुका है। इसे देखते हुए दोनों नेताओं ने महत्वाकांक्षाओं को बढ़ाने का फैसला किया। दोनों देशों ने 2032 तक द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करके $200 बिलियन तक पहुँचाने का लक्ष्य रखा है।
विदेश सचिव ने कहा कि दोनों देश द्विपक्षीय नागरिक परमाणु सहयोग को बढ़ावा देंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति ने सीमा पार आतंकवाद सहित आतंकवाद के सभी रूपों और अभिव्यक्तियों की भी निंदा की। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा है कि पोलैंड को आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की नीति अपनानी चाहिए और भारत के पड़ोसी देशों में आतंकी गतिविधियों को बढ़ावा देने में मदद नहीं करनी चाहिए। पोलैंड के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री राद्रोस्क्वाफ शिकोर्सी के साथ नई दिल्ली में बैठक के दौरान डॉ जयशंकर ने कहा कि हाल के समय में अमेरिका और फ्रांस में उन्होंने यूक्रेन संघर्ष और उसके प्रभावों के बारे में भारत का दृष्टिकोण साझा किया है। फिलीपींस में हाल ही में आए भीषण तूफान के बाद भारत ने 30 टन मानवीय सहायता सामग्री भेजी है। ये सामग्री लेकर भारतीय विमान C-17 फिलीपींस के लिए रवाना हुआ। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि भारत संकट के समय सहयोगी देशों को सहायता के लिए प्रतिबद्ध है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF ने वर्ष 2025 के लिए भारत की आर्थिक वृद्धि का अनुमान 0.7 अंक बढ़ाकर 7.3% कर दिया है। विश्व आर्थिक आउटलुक अपडेट में IMF ने कहा कि यह वृद्धि इस वित्तीय वर्ष की चौथी तिमाही में मजबूत गति को दर्शाती है। भाजपा के कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नबीन का भारतीय जनता पार्टी का नया अध्यक्ष बनना तय है। पार्टी के राष्ट्रीय रिटर्निंग अधिकारी के लक्ष्मण ने बताया कि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए केवल नितिन नबीन का नाम प्रस्तावित किया गया है। हालांकि उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने जाने की औपचारिक घोषणा कल की जाएगी। डॉक्टर लक्ष्मण ने कहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए नितिन नबीन के पक्ष में नामांकन पत्रों की सभी 37 सेट प्राप्त हुए हैं। सभी नामांकन पत्र वैध पाए गए हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने त्योहारों के दौरान हवाई यात्री किराए में अत्यधिक वृद्धि पर चिंता व्यक्त की है। न्यायालय ने कहा कि हवाई किराए में होने वाले अप्रत्याशित उतार चढ़ाव को नियंत्रित करने के लिए वह हस्तक्षेप करेगा। न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और संदीप मेहता की पीठ ने केंद्र सरकार और नागर विमानन महानिदेशालय से इस बारे में जवाब दाखिल करने को कहा है। इस मामले की अगली सुनवाई 23 फरवरी को की जाएगी। सर्वोच्च न्यायालय ने निर्वाचन आयोग को पश्चिम बंगाल में जारी मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR कार्य के दौरान तार्किक विसंगतियों की सूची में शामिल मतदाताओं के नाम प्रदर्शित करने का निर्देश दिया है। भारतीय रेलवे ने मौनी अमावस्या के अवसर पर 244 विशेष रेलगाड़ियां चलाई। इनमें 4,50,000 से अधिक यात्रियों ने यात्रा की। इस दौरान रेलवे ने 3 से 18 जनवरी के बीच विशेष रेलगाड़ियां चलाई। रेल मंत्रालय ने बताया कि प्रयागराज में कल त्योहार के दौरान यात्रियों के लिए 40 विशेष रेलगाड़ियां चलाई गई और जिनमें लगभग 1,00,000 यात्रियों ने यात्रा की। महिला प्रीमियर लीग क्रिकेट में वडोदरा में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने गुजरात जायंट्स को 179 रन का लक्ष्य दिया है। लक्ष्य के जवाब में गुजरात जायंट्स ने ताजा समाचार मिलने तक 9वें ओवर में 4 विकेट पर 40 रन बना लिए हैं। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 6 विकेट पर 178 रन बनाए। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।